नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द प्रेडेटर्स बॉल। पत्रकार कॉनी ब्रक की गैर कथा वित्तीय पड़ताल है, जो 1980 के दशक में ड्रेक्सल बर्हम लैम्बर्ट, माइकल मिल्केन और उच्च प्रतिफल बॉन्ड बाजार के उभार को समझती है। पुस्तक का केंद्र केवल एक प्रसिद्ध निवेश बैंकर का उत्थान और पतन नहीं है, बल्कि वह वित्तीय ढांचा है जिसने अपेक्षाकृत कम साख वाली कंपनियों तक विशाल पूंजी पहुंचाई। मिल्केन की टीम ने जंक बॉन्ड को सीमांत और जोखिमपूर्ण साधन की छवि से निकालकर अधिग्रहणों, लीवरेज्ड बायआउट्स और शत्रुतापूर्ण टेकओवर के प्रमुख ईंधन में बदल दिया। ब्रक बताती हैं कि वित्तीय नवाचार, आक्रामक बिक्री, निवेशक नेटवर्क और कॉरपोरेट रेडरों की महत्वाकांक्षा कैसे एक दूसरे को मजबूत करते थे। साथ ही पुस्तक अनुपालन की उपेक्षा, हितों के टकराव और प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाती है। इसका उद्देश्य न तो जंक बॉन्ड का सरल उत्सव है, न केवल नैतिक निंदा। यह दिखाती है कि पूंजी बाजार में नई तकनीकें शक्ति का वितरण बदल सकती हैं और कमजोर नियंत्रण उस शक्ति को खतरनाक दिशा में ले जा सकते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जंक बॉन्ड को नए पूंजी बाजार में बदलने की प्रक्रिया। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विषय जंक बॉन्ड का रूपांतरण है। ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन्हें प्रमुख रेटिंग एजेंसियां निवेश योग्य श्रेणी से नीचे मानती हैं, इसलिए निवेशकों को अधिक ब्याज देकर जोखिम की भरपाई की जाती है। पहले स्थापित वॉल स्ट्रीट संस्थान इन्हें सीमित, असुविधाजनक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानते थे। माइकल मिल्केन ने इस उपेक्षा में अवसर देखा। उनका तर्क व्यवहार में यह था कि हर कम रेटिंग वाला जारीकर्ता अनिवार्य रूप से खराब व्यवसाय नहीं होता और विविधीकृत पोर्टफोलियो में अधिक प्रतिफल जोखिम का प्रतिकार कर सकता है। ड्रेक्सल ने खरीदारों का एक सक्रिय नेटवर्क विकसित किया और नए निर्गमों को तेज गति से बाजार तक पहुंचाया। इससे उन कंपनियों और खरीदारों को धन मिलने लगा जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग या निवेश ग्रेड ऋण से पर्याप्त सहायता नहीं मिलती थी। ब्रक इस नवाचार की उपयोगिता और उसकी सीमा दोनों दिखाती हैं। अधिक पूंजी पहुंचने से प्रतिस्पर्धा और सौदे संभव हुए, लेकिन ऋण की उपलब्धता ने कई अधिग्रहणों को इतना बड़ा बना दिया कि सफलता भविष्य के नकदी प्रवाह और संपत्ति बिक्री पर निर्भर हो गई। इसलिए पुस्तक जंक बॉन्ड को अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं मानती। वह बताती है कि साधन का प्रभाव उसके मूल्यांकन, वितरण और इस्तेमाल करने वाले लोगों की प्रोत्साहन संरचना से तय होता है। दूसरा, लिवरेज बायआउट और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का वित्तीय इंजन। ब्रक स्पष्ट करती हैं कि जंक बॉन्ड ने कॉरपोरेट नियंत्रण के बाजार को कैसे बदल दिया। लिवरेज्ड बायआउट में खरीदार कंपनी के अधिग्रहण मूल्य का बड़ा हिस्सा उधार से जुटाता है, फिर लक्ष्य कंपनी के नकदी प्रवाह, संपत्तियों या पुनर्गठन क्षमता से उस ऋण को संभालने की योजना बनाता है। जब उच्च प्रतिफल ऋण जल्दी उपलब्ध होने लगा, तब अपेक्षाकृत छोटे निवेशक समूह भी बड़ी सार्वजनिक कंपनियों को चुनौती दे सके। कार्ल आइकन, रोनाल्ड पेरेलमैन और नेल्सन पेल्च जैसे रेडरो से जुड़े सौदे इस बदलाव का मानवीय और व्यावसायिक पक्ष सामने लाते हैं। पुस्तक का तर्क यह नहीं कि हर टेकओवर विनाशकारी था। अधिग्रहण की धमकी अक्षम प्रबंधन पर दबाव डाल सकती थी, संपत्तियों के मूल्य को उजागर कर सकती थी और शेयरधारकों को बेहतर प्रस्ताव दिला सकती थी, लेकिन अत्यधिक लीवरेज की लागत भी वास्तविक थी। अधिग्रहण के बाद कंपनी की प्राथमिकता दीर्घकालिक निवेश, कर्मचारियों या परिचालन स्थिरता के बजाय ब्याज भुगतान और त्वरित नकदी पैदा करना बन सकती थी। कई सौदों में संपत्ति बेचने और खर्च काटने की प्रेरणा इसी ऋण संरचना से आती थी। इस तरह पुस्तक वित्तीय इंजीनियरिंग को केवल आंकड़ों का खेल नहीं मानती, बल्कि उसे कंपनियों, उद्योगों और हितधारकों के बीच शक्ति संबंध बदलने वाली प्रक्रिया के रूप में रखती है। तीसरा, मिल्केन का खरीदार नेटवर्क और अत्यधिक केंद्रित प्रभाव। द प्रेडेटर्स बॉल की विशिष्ट शक्ति यह है कि यह बाजार को अनाम संस्थाओं का निष्पक्ष तंत्र मानने के बजाय संबंधों के नेटवर्क के रूप में देखती है। मिल्केन की प्रभावशीलता केवल बॉन्ड विश्लेषण या व्यापारिक रिकॉर्ड से नहीं बनी, उन्होंने संस्थागत खरीदारों, कॉरपोरेट ग्राहकों और सौदा करने वाले निवेशकों के बीच भरोसे, पहुंच और पारस्परिक लाभ का घना तंत्र खड़ा किया। जब किसी रेडर को अधिग्रहण के लिए धन चाहिए होता, ड्रेक्सल की वितरण क्षमता और उसके नियमित खरीदारों तक पहुंच निर्णायक बन सकती थी। अत्यधिक आत्मविश्वास वाले पत्र और ब्लाइंड पूल जैसी व्यवस्थाएं इसी गति और विश्वास पर आधारित थीं। ऐसे पत्र किसी प्रस्तावित सौदे के लिए वित्त जुटाने की मजबूत संभावना का संकेत देते थे, जबकि ब्लाइंड पूल में पूंजी पहले जुटाई जाती थी और अधिग्रहण लक्ष्य बाद में चुना जा सकता था। यह व्यवस्था पारंपरिक वित्तदाताओं की धीमी प्रक्रियाओं के मुकाबले बड़ा लाभ देती थी। फिर भी ब्रक इसकी अंतर्निहित समस्या दिखाती हैं। जब एक ही प्रभावशाली मध्यस्थ पूंजी, सूचना और कई पक्षों के रिश्तों को नियंत्रित करने लगे, तब स्वतंत्र निर्णय, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण और हितों की स्पष्ट सीमाएं कमजोर पड़ सकती हैं। पुस्तक इसलिए बिक्री कौशल और सामाजिक पूंजी को वित्तीय क्षमता का हिस्सा मानती है, पर यह भी बताती है कि वही क्षमता जवाबदेही के बिना असमान शक्ति में बदलती है। चौथा, ड्रेक्सल की संस्कृति में अनुपालन, हितों के टकराव और कानून का संकट। पुस्तक का चौथा केंद्रीय आयाम यह है कि असाधारण व्यावसायिक सफलता किस तरह संगठनात्मक नियंत्रण को पीछे छोड़ सकती है। ड्रेक्सल में मिल्केन की उच्च प्रतिफल टीम असाधारण मुनाफा और प्रतिष्ठा पैदा करती थी, जिससे उसके प्रभाव का दायरा बहुत बड़ा हो गया। ब्रक के विवरण में यह स्थिति केवल व्यक्तिगत लालच की कहानी नहीं बनती, यह उस संस्था की समस्या भी है जिसमें लाभ पैदा करने वाला विभाग इतना शक्तिशाली हो जाए कि अनुपालन, आंतरिक निगरानी और वरिष्ठ प्रबंधन की सीमाएं प्रभावहीन लगने लगे। प्रतिभूति बाजार में सूचना की गोपनीयता और हितों की अलगाव रेखा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक ग्राहक की जानकारी दूसरे ग्राहक के व्यापार को अनुचित लाभ दे सकती है। पुस्तक ऐसे वातावरण के जोखिमों को रेखांकित करती है जहां सौदे तेजी से होते हैं, संबंध घने होते हैं और कानूनी सीमाओं को व्यापार की बाधा समझा जाता है। बाद में ड्रेक्सल के संकट और मिल्केन के विरुद्ध प्रतिभूति तथा रिपोर्टिंग उल्लंघनों से जुड़ी कार्रवाई इस जोखिम को वास्तविक परिणाम देती है। यहां मुख्य सीख यह है कि नवाचार के लिए नियमों को अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता। मजबूत नियंत्रण केवल दंड से बचने का उपाय नहीं है, वे बाजार के भरोसे और पूंजी आवंटन की विश्वसनीयता की शर्त है। ब्रक की आलोचना विशेष रूप से प्रभावी इसलिए है क्योंकि वह अनियमितता को वित्तीय मॉडल और संस्थागत संस्कृति से जोड़कर देखती है। अंत में, पुराने वॉल स्ट्रीट की जोखिम झिझक और नए वित्त की सीमाएं। ब्रक की पुस्तक 1980 के दशक के वॉल स्ट्रीट में पीढ़ीगत और संस्थागत टकराव को भी पकड़ती है। पुराने प्रतिष्ठित बैंक साख, परंपरा और नियंत्रित जोखिम को महत्व देते थे, इस कारण वे कम रेटिंग वाले ऋण और तेज अधिग्रहण वित्त पोषण में उतनी आक्रामकता से नहीं उतरे। ड्रेक्सल ने इसी रिक्त स्थान का उपयोग किया। यह उदाहरण दिखाता है कि बड़ी संस्थाओं की नौकरशाही और जोखिम झिझक नए प्रतिस्पर्धियों के लिए अवसर खोल सकती है, लेकिन पुस्तक नव प्रवर्तनकारी पक्ष को रोमांटिक नहीं बनाती। तेजी, साहस और स्थापित नियमों को चुनौती देने की क्षमता उपयोगी हो सकती है, फिर भी इनके साथ मूल्यांकन, अनुशासन, पारदर्शिता और नुकसान सहने की क्षमता जरूरी है। जंक बॉन्ड बाजार ने ऐसे व्यवसायों को धन दिया जिन्हें पुराने ढांचे में पर्याप्त अवसर नहीं मिलता था, लेकिन उसी बाजार ने अत्यधिक ऋण वाले सौदों को भी संभव बनाया। इसलिए पुस्तक का व्यापक आर्थिक अर्थ द्वंद्वात्मक है। पूंजी तक पहुंच का विस्तार अपने आप में प्रगति हो सकता है, पर यदि वित्त का लक्ष्य केवल नियंत्रण हासिल करना और अल्पकालिक लाभ निकालना बन जाए तो उत्पादक निवेश कमजोर हो सकता है। आज के पाठक के लिए यह विषय विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि किसी भी नई वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन केवल उसके लाभ से नहीं, उसके जोखिम वितरण, प्रोत्साहनों और निगरानी ढांचे से करना चाहिए। निष्कर्ष में, द प्रेडेटर्स बॉल उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो निवेश बैंकिंग, निजी इक्विटी, कॉरपोरेट कानून, प्रतिभूति बाजार या अमेरिकी व्यावसायिक इतिहास को समझना चाहते हैं। सामान्य पाठक भी इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉनी ब्रक जटिल वित्तीय साधनों को व्यक्तियों, संस्थाओं और वास्तविक सौदों के संदर्भ में रखती हैं। इससे जंक बॉन्ड, लिवरेज बायआउट और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण जैसे विषय केवल तकनीकी शब्द नहीं रहते, बल्कि शक्ति, जोखिम और जवाबदेही के प्रश्न बन जाते हैं। व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक ऋण आधारित सौदों की बुनियादी संरचना, निवेशक नेटवर्क के महत्व और हितों के टकराव के खतरे को बेहतर ढंग से पहचान सकता है। बौद्धिक लाभ यह है कि पुस्तक वित्तीय नवाचार के बारे में सरल निष्कर्षों से बचना सिखाती है। वही व्यवस्था जो पूंजी की पहुंच बढ़ाती है, गलत प्रोत्साहनों के साथ अस्थिरता और दुरुपयोग भी बढ़ा सकती है। इसी संतुलन के कारण यह केवल घोटाले का वृत्तांत नहीं बनती। समान विषय की कई पुस्तकों में किसी एक विशाल अधिग्रहण या किसी एक कंपनी के पतन पर ध्यान रहता है। ब्रक की पुस्तक अलग इसलिए है कि वह ड्रेक्सल, मिल्केन, निवेशकों और रेड्रो के परस्पर निर्भर तंत्र को केंद्र में रखती है। पाठक को वित्तीय युग का संस्थागत चित्र मिलता है, न कि केवल सनसनीखेज घटनाओं की सूची। फिर भी वर्तमान नियमों और बाजार स्थितियों के लिए इसे आधुनिक स्रोतों के साथ पढ़ना उचित रहेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कॉनी ब्रुक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।